आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
नमस्कार, 18 नवंबर शुक्रवार का दिन आज तक रेडियो पर दिन भर सुन रहे हैं आप। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। 1 दिसंबर को गुजरात में 79 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से 82 सीटों पर आज जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा जैसे कई नेता चुनाव प्रचार करने उतरे। तो इस बार बीजेपी की कैंपेन प्लानिंग पहले से कितनी अलग है और बाकी पार्टियां इसकी काट क्या निकाल रही हैं? वहीं टिकट वितरण पर पनपे असंतोष ने गुजरात बीजेपी में बागियों के एक धड़े को जन्म दे दिया है। इसमें से एक हैं नांदोद से विधायक रहे हर्षद वसावा, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर इंडिपेंडेंट पर्चा भरा है। तो पार्टी में उपजा या गुस्सा बीजेपी को कितना भारी पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसकी वजह क्या है और बतौर अध्यक्ष उनका कार्यकाल कैसा रहा, इसे हम समझेंगे। और आखिर में आज से शुरू हुए एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस की बात होगी। पहले दिन के कंसर्न्स क्या रहे, क्रिप्टो को लेकर अमित शाह ने क्या चिंताएं व्यक्त की हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। मगर पहले वक्त है 60 सेकंड्स हेडलाइंस का, सुनते हैं सूरज कुमार से।
शुक्रिया जमशेद। विदेश मंत्रालय का ड्राइवर पाकिस्तान को दे रहा था खुफिया जानकारी, दिल्ली पुलिस ने किया अरेस्ट। फारूक अब्दुल्ला ने कहा जल्द देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा, उमर अब्दुल्ला को मिल सकती है कमान। सावरकर पर बयान के बाद राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, उद्धव ठाकरे ने कहा हमारे मन में सावरकर के लिए सम्मान और विश्वास। सुप्रीम कोर्ट में 13,000 ट्रांसफर पिटीशन पेंडिंग, सीजीआई बोले 13 बेंच रोजाना करेगी 130 केसों की सुनवाई। हैदराबाद के सरकारी कॉलेज की लैब में केमिकल लीक हुआ, 25 छात्रों की बिगड़ी तबीयत। सरकार ने पेश किया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट, प्रॉपर रेगुलेशन प्रोवाइड करना है लक्ष्य। एमजी मोटर्स पर आयकर विभाग का छापा, चीनी कंपनियों के साथ लिंक होने का है आरोप। और भारत न्यूजीलैंड का पहला T20 मैच बारिश के कारण हुआ रद्द, दूसरा मैच 20 नवंबर को।
नमस्कार, ये है दिनभर, मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। गुजरात चुनाव में महीना भर से भी कम का वक्त रह गया है। 79 सीटों पर पहले चरण का चुनाव है, लिहाजा पार्टियां भी एक्टिव मोड में आ गई हैं। आज बीजेपी ने 79 में से 82 सीटों पर प्रचार के लिए जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा समेत 86 नेताओं को मैदान में उतारा। सूरत पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली को संबोधित करते हुए कोविड के वक्त सरकार के किए कामों का लेखा जोखा लोगों के सामने रखा।
अभी अमेरिका भी कोरोना से बाहर नहीं निकला है, अभी यूरोप भी कोरोना से बाहर नहीं निकला है, और 130 करोड़ का देश मोदी जी ने 219 करोड़ डोज लगा करके, डबल डोज विद बूस्टर मुफ्त में लगा करके सुरक्षा कवच पहना दिया है। ये किया है तो भारत में मोदी जी ने कर दिया।
वहीं बीजेपी चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए लोगों से सुझाव मांग रही है। पार्टी ने 5 नवम्बर को अग्रसर गुजरात अभियान शुरू किया था। इसके अलावा कहा जा रहा है कि यूपी चुनाव की तर्ज पर ही गुजरात में भी बीजेपी घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेगी। खुद पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह इसका हिस्सा होंगे। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी कमर कस रही है। केजरीवाल लगातार राज्य के दौरे पर हैं और दिल्ली मॉडल की तर्ज पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। वहीं पिछले चुनाव में 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस भी पटेल आदिवासी समाज को अपने पाले में करने की कोशिश में लगी है। तो सबसे पहले बात बीजेपी के चुनावी कैंपेन को लेकर ही करते हैं। इस मर्तबा क्या तैयारी है बीजेपी की, ताकि 2017 में जीते 99 सीटों के आंकड़े को आगे बढ़ाया जा सके। और ये मैंने पूछा गुजरात में आज तक रेडियो रिपोर्टर सौरभ वक्तानिया से।
जी देखिए, जब से इलेक्शन की जो तारीखों का ऐलान हुआ है, मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे काफी पहले बीजेपी हर घर जाने की कोशिश कर रही थी। किस तरीके की उम्मीद इस बार जनता यहां पर कर रही है, साथ ही छोटे छोटे जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि कोई इवेंट हो गया, कोई क्रिकेट मैच हो गया, अन्य जो भी इवेंट्स होते हैं, वो बीजेपी डोनेशन कैंप हो गया, तो ऐसे अलग अलग जो इवेंट्स है उस तौर पर लोगों से कनेक्ट कर रही थी। किसी को कोई जरूरत होती है तो उनको कोई सहायता मुहैया करानी है, तो इस तौर पे बीजेपी काफी ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट में थी। डोर टू डोर कैंपेनिंग उतना ज्यादा मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि बीजेपी बहुत ज्यादा डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है, लेकिन वो ज्यादा तौर पे जो रोड शोज होते हैं या फिर टाइप का, जिसे हम कहते हैं कि गली में जाके बीजेपी के कार्यकर्ता घूमते हैं, बीजेपी का एक बहुत मशहूर यहाँ पे गाना है, एक गुजराती में गाना है, तो वो गाना रिक्शा पे बजता है, वो गली गली से जाती है वो रिक्शा, और फिर उसके पीछे कार्यकर्ता रहते हैं जो बाइक्स पे मौजूद होते हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ। और सारी जो पब्लिक मीटिंग्स है वो काफी महत्वपूर्ण रख रही है। एक जनसभा होती है जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं, और फिर उन जनसभा को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, और जिस तरीके से मैं जो कारपेट बॉम्बिंग की बात कर रहा हूँ, तो कारपेट बॉम्बिंग में जैसे तमाम बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप से लेकर स्टेट लीडरशिप सब इस वक्त गुजरात में मौजूद है और वो जनसभाएं कर रही है। और रोड शोज बहुत मेगा हो रहे हैं, कई किलोमीटर लंबे ये रोड शोज हो रहे हैं कि लोगों तक, यानी कि एक छाप लोगों तक पहुंचे कि बीजेपी है यहाँ पर, बीजेपी ने क्या क्या काम किए हैं और गुजरात के लिए बीजेपी ही सही है, ये मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है।
ये बताइए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी दिख रही है और ये बीजेपी से कितनी अलग है?
देखिए, आम आदमी पार्टी मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि बीजेपी को अच्छा टफ दे रही है कैंपेनिंग के लिए, क्योंकि लगातार कुछ महीनों से जो बीजेपी आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन रहा है वो बहुत जबरदस्त रहा है, चाहे वो गारंटीज देना हो, डोर टू डोर कैंपेन करना हो। देखिए, डोर टू डोर कैंपेन में आम आदमी पार्टी में अच्छा देख रहा हूँ, जहाँ पे जो उनके कैंडिडेट्स डिक्लेयर हुए हैं वो डोर टू डोर लोगों को पर्चा वगैरह दे रहे हैं, क्या कुछ उनकी गारंटीज रहेगी, वो कार्ड्स वो बांट रहे हैं। तो डोर टू डोर कैंपेनिंग आम आदमी पार्टी कर रही है, ये तो मुझे कई दिख भी है। साथ ही रोड शोज भी काफी ज्यादा वो कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल 3 दिन के लिए गुजरात में आने वाले हैं, तो सारे पब्लिक मीटिंग्स और रोड शो हमें देखने को मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी चाहे वो जमीनी तौर पे हो, संगठन लेवल पे हो, या सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी अगर जो बीजेपी को कोई टक्कर दे रहा है तो मैं आम आदमी पार्टी को ही देख रहा हूँ। लेकिन वो कितनी सीट्स लाएगी वो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नई पार्टी है, संगठन उतना मजबूत नहीं है उनका, तो कितनी सीट आएगी वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस की अगर जो मैं बात करूँ तो कांग्रेस की मुश्किलें काफी ज्यादा है। देखिए, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, ट्रेडिशनल फाइट गुजरात में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता है, लेकिन कांग्रेस का कैंपेन मैं देख नहीं पा रहा हूँ। सेंट्रल लीडरशिप पूरी तरीके से नदारद है। और बात करूं तो राहुल गांधी की, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में अभी कांग्रेस जरूर कह रही है कि 21 तारीख को राहुल गांधी आने वाले हैं गुजरात के अलग अलग हिस्सों में, सौराष्ट्र में वो पब्लिक मीटिंग और भव्य रोड शो करने वाले हैं। लेकिन एक दिन आने से नहीं होगा, उनको लगातार आना पड़ेगा जब तक ये चुनाव है, सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हैं कैंपेनिंग के लिए। तो सेंट्रल लीडरशिप आए और जो ह्यूज जो पब्लिक मीटिंग और रोड शो जैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी कर रही है, वैसे कांग्रेस कहीं ना कहीं वो नहीं हो रहा है। लेकिन हम उन्हें कम भी नहीं आंक सकते, खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस तरह से कह रहे हैं कि उनके जो लोकल लेवल पे लीडर्स हैं वो काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग वो कर रहे हैं, वो आपको सोशल मीडिया पे न्यूज पेपर पे नहीं दिखेगी। लेकिन कांग्रेस जो अपनी पकड़ है उतने इलाकों को तो वो मजबूती से पकड़े हुए है, ऐसा दिख रहा है।
शुक्रिया सौरभ। एक ओर जब बीजेपी कैंपेन को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटी है, तो दूसरी तरफ पार्टी में असंतोष भी दिखाई देने लगा है। बीजेपी ने पिछले चुनाव के मुकाबले 50% चेहरों के टिकट काट लिए हैं, यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, नितिन पटेल, सौरभ पटेल समेत 6 बड़े नेताओं तक को तो मौका ही नहीं दिया गया। वहीं नरोदा पाटिया दंगा मामले के एक दोषी की बेटी को टिकट दिए जाने पर बीजेपी सवालों के घेरे में भी है। इन सब से इतर आप ये भी पाएंगे कि वडोदरा की वाघोडिया सीट से टिकट ना मिलने से नाराज 6 बार की विधायक मधु श्रीवास्तव ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। नांदोद से विधायक रहे हर्षद वसावा ने पार्टी से इस्तीफा देकर इंडिपेंडेंट पर्चा भरा है, जो कि बीजेपी की अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रेसिडेंट थे। अनुसूचित जनजाति के लिए गुजरात में 27 सीटें आरक्षित हैं। बीजेपी ने अभी तक बहुत ज्यादा चुनावी सफलता हासिल नहीं की है, इसलिए इस मर्तबा पार्टी ने इन पर भी अपनी नजर गड़ा रखी है। तो अब सवाल है कि टिकट वितरण से पैदा हो रहा असंतोष क्या गुजरात चुनाव में बीजेपी को नुकसान भी पहुंचाएगा या पार्टी इससे निपट लेगी? और ये जानने के लिए मैंने बात की गुजरात में आज तक रेडियो रिपोर्टर गोपी घांगर से।
देखिए, बीजेपी में अगर देखने जाए तो कई लोग असंतुष्ट है, यहाँ तक कि ना सिर्फ मध्य गुजरात में मधु श्रीवास्तव असंतुष्ट है, बल्कि वहां के पादरा सीट से जो दीनू मामा के नाम से जाने जाते जो विधायक है वो भी असंतुष्ट है। यहाँ तक कि अगर देखने जाए तो बनासकांठा में भी कई ऐसे नेता का नाम सामने आ रहा है, धवल सिंह झाला जो अल्पेश ठाकुर के राइट हैंड कहे जाते थे, जो बाई इलेक्शन में बीजेपी में शामिल हुए थे कांग्रेस के से को छोड़कर, और अब धवल सिंह झाला को भी टिकट नहीं दिया और उन्होंने भी निर्दलीय के तौर पर फॉर्म भरा है। अब तक अगर देखने जाए तो ऐसे करीब 5 से ज्यादा विधायक हैं जिन्हें टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने बीजेपी के सामने बगावती सूर अपनाए हैं और लगातार बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर जब कल हमने सीआर पाटिल से सवाल पूछा था तो सीआर पाटिल ने ये साफ कह दिया था कि इन सभी भारतीय विधायकों के पास जब तक फॉर्म वापस खींचने का वक्त है उतना वक्त है, वरना पार्टी उनको सस्पेंड कर देगी और पार्टी उनके खिलाफ कार्यवाही भी करेगी। लेकिन मधु श्रीवास्तव जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, अब वो बतौर निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग बीजेपी को ज्यादा डैमेज पहुंचा सकते हैं क्योंकि सालों से ये लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, यहाँ पे कई सालों से उन्होंने काम किया है और वैसे में अगर ये लोग निर्दलीय के तौर पर जो नेता है ये खड़े रहते हैं तो ये बीजेपी के लिए भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। बीजेपी के सीआर पाटिल और जो गृह मंत्री है हर्ष संगवीन, दोनों ने सभी नेताओं से बात करने की कोशिश भी की है लेकिन कोई भी नेता बात मानने को या सुनने को तैयार नहीं है।
गोपी, हमने देखा कि हर्षद वसावा ने पार्टी से इस्तीफा दिया है जो कि बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रेसिडेंट थे। उनका जाना क्या इस तबके में बीजेपी के वोट काउंट को प्रभावित करेगा?
देखिए, अगर बात की जाए तो अनुसूचित जाति वाला जो एक पूरा बेल्ट है वहां पे इसका नुकसान ज्यादा हो सकता है क्योंकि बीजेपी जो है उनके आज भी ऐसे लीडर्स की यहाँ पे कमी है जहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति से जो लोग आते हैं, ऐसे लीडर्स जो एक स्ट्रांग वोट बैंक है, ऐसे लीडर्स की यहाँ पे कमी है और वैसे में इसीलिए शायद देखिए आप अल्पेश ठाकुर को भी बीजेपी में इसीलिए शामिल किया गया था या फिर कोई एक बड़ा दलित चेहरा जो होना चाहिए वो अभी भी बीजेपी ऐसे चेहरे की तलाश में है जो कांग्रेस की वोट बैंक है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि जो कांग्रेस की वोट बैंक है उसमें वो सेम लगा पाए। आज भी कांग्रेस की अपनी जो वोट बैंक है जो ट्रेडिशनली चाहे वो ट्राइबल हो, ओबीसी हो या दलित वोट बैंक है, आज भी कांग्रेस के पास उसी तरीके से बनी हुई है और खास करके जो रूरल इलाके हैं वहां पे। तो वैसे में बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि वो इस वोट बैंक को हासिल कर पाए और वैसे में जो नेता बीजेपी को छोड़ रहे हैं या टिकट ना मिलने से नाराजगी जता रहे हैं, जो बीजेपी के लिए अब काम नहीं करना चाहते, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी डैमेज करेंगे क्योंकि अगर नेता काम नहीं भी करते और साइलेंट हो जाते हैं तब भी वो बीजेपी के को डैमेज कर सकते हैं। तो वैसे में बीजेपी लगातार जो है वो लोगों को मनाने में लगी हुई है, जो नेता सालों से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें भी मनाने की कोशिश कर रही है तो और जो नेता अभी अभी बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं उनको भी मनाने की कोशिश कर रही है ताकि उनकी जो एक ट्रेडिशनल वोट बैंक है जो नेता के साथ जुड़े हुए उनके कार्यकर्ता है वो सारे बीजेपी के साथ रहे।
शुक्रिया गोपी। तीन बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस सुगबुगाहट की वजह फारूक साहब की खराब सेहत को बताया जा रहा है। 85 साल के फारूक अब्दुल्ला की आधी से ज्यादा जिंदगी जम्मू कश्मीर की सियासत के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। 1996 में जब वो जम्मू कश्मीर के चौथे मुख्यमंत्री बने उससे पहले से कश्मीर की राजनीति में उनकी सहभागिता रही। 2019 में जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 में संशोधन हुआ और 35A को हटाया गया तो फारूक उन नेताओं में से एक थे जिन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था और जब बाहर आए तो 2020 में गुपकार अलायंस की अध्यक्षता भी संभाली और पीडीपी सीपीआई को एक छत के नीचे लाए। कयास लग रहे हैं कि पार्टी 2 हफ्तों के अंदर नए अध्यक्ष का चुनाव करवा सकती है और माना जा रहा है कि उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को पार्टी की कमान मिल सकती है। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के तौर पर फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल को देखें तो उनके करियर की क्या हाई और लो पॉइंट्स हमें दिखाई पड़ते हैं, ये जानने के लिए मैंने बात की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के प्रोफेसर डॉक्टर नूर अहमद बाबा से।
1980 में जब उनकी देहांत हो गया उनका तो उस वक्त अपनी पोजीशन की ट्रांसफर के लिए पार्टी की कयादत के लिए फारूक अब्दुल्ला को चुना था। हालांकि उसके बाद भी उसमें तनाजा हुआ, उनके ब्रदर गुरशाह ने उसको कॉन्टेस्ट किया जिसको बाद में इसकी वजह से यहाँ पर 1980s में एक तरह की रसाकशी चली और अनसर्टेनिटी पैदा होगी, क्योंकि एक फैक्शन को कांग्रेस ने सपोर्ट किया था और फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट गिरा के, तो बल्कि मुझे लगता है इसकी वजह से कुछ जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस को हवा मिली उस वक्त, उसमें उसका भी हाथ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमाने में, जैसे सब लोग जानते हैं, यहाँ की डोमिनेंट पार्टी थी और उसको, लेकिन बाद में मिलिटेंसी के बाद यहाँ हालात बहुत कशीदा हो गए, उनको बीच में भागना भी पड़ा, लेकिन जब पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत हो गई वो वापस आ गए और 1996 में उन्होंने गवर्नमेंट दोबारा से संभाली जो 2002 तक कायम रही। उस दौरान यहाँ पर पीडीपी भी उठी थी और 2002 के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन हारा पीडीपी और कांग्रेस की मखलूत हुकूमत बनी जो 2008 तक चली। उसके बाद दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई, लेकिन उन्होंने उस वक्त उमर अब्दुल्ला को वाइस प्रेसिडेंट पार्टी का बनाया था और इस दौरान खुद वो प्रेसिडेंट रहे, लेकिन चीफ मिनिस्टर उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने संभाली। उसके बाद जब फिर दोबारा इलेक्शन हो गया 14 में, इसमें दोबारा की गवर्नमेंट नहीं बन सकी, बीजेपी और पीडीपी ने हुकूमत संभाली, तो एक किस्म की वो उनका एक पॉलिटिकल डिफिकल्ट पीरियड बना पिछले 2-4 साल से। तो उसमें उनको फिर भी जो, क्योंकि वो सबसे बड़े लीडर थे कश्मीर के, की वजह से पीएजीडी भी जब बन गई, कोलिशन ऑफ सम लोकल रीजनल पार्टी, तो उसमें उसके वही साथ रहे, लेकिन वो अभी तक इसमें है, लेकिन उनकी सेहत में प्रॉब्लम है, उनका ऑपरेशन भी हो गया था बीच में और उनका गुर्दा भी चेंज करना पड़ा था।
नूर साहब, जम्मू कश्मीर का परिसीमन भी हो चुका है, कहा जा रहा है कि जल्द ही चुनाव भी हो सकता है, तो इस लिहाज से नेशनल कॉन्फ्रेंस का पॉलिटिकल फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं?
नहीं, अभी तो बहुत अनसर्टेन सिचुएशन है, क्योंकि किस तरह से नए पॉलिटिकल फोर्सेस इमर्ज हो गए, लेकिन मुझे नहीं लगता नेशनल कॉन्फ्रेंस कम्प्लीटली इरेलेवेंट हो गई है। जैसे कि हमने जो देखे थे अभी जो इलेक्शन हुए थे 20 में पंचायत रिलेटेड, जो इलेक्शन हो गए तो उनमें उनका फिर काफी अच्छा हिस्सा था, लेकिन अब चूंकि इलेक्शन नहीं हुए और हालात पॉलिटिकली थोड़ा अनसर्टेन सिचुएशन कंटिन्यू कर रही है और नए किस्म के ग्रुप्स और बीजेपी भी अपना अष्टसूख बढ़ा रही है, इसलिए अभी बहुत मुश्किल है ये कहना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना अष्टसूख कायम रख सकेगी, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि उनके रूट्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूट्स काफी स्ट्रांग है पीडीपी के मुकाबले में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफी स्ट्रांग है कश्मीर में।
बहुत बहुत शुक्रिया नूर अहमद बाबा। आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आज आगाज हो गया। 2 दिनों के इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इंडिया की आतंकवाद रोधी टास्क एजेंसी NIA इसे आयोजित कर रही है। इस सम्मेलन में 17 से ज्यादा देशों के 450 डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं और ये ग्लोबल स्तर पर इस तरह का तीसरा कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले ये सम्मेलन अप्रैल 2018 में पेरिस में और नवंबर 2019 में मेलबर्न में आयोजित हुआ था। पीएम मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ये अद्भुत है कि सम्मेलन भारत में हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से आतंकवाद का सामना कर रहे हैं, हमें आतंकवाद के खतरे से सावधान रहना होगा। अगर आतंकवाद को मिल रहे आर्थिक सपोर्ट को चोट नहीं पहुंचाई गई तो अब तक आतंकवाद के खिलाफ जो कूटनीतिक बढ़त हमने हासिल की है वो जल्द ही बेकार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।
Even a single life lost is one too many. So, we will not rest till terrorism is uprooted.
तो इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें क्या रहीं, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान को लेकर उन्होंने क्या मुद्दे उठाए, ये पूछा मैंने आज तक रेडियो रिपोर्टर जितेंद्र बहादुर सिंह से।
देखिए, 2 दिवसीय जो नो मनी फॉर टेरर को लेकर के कॉन्फ्रेंस हो रही है, भारत में ये कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त आतंक की फंडिंग की जा रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ तरीके से कहा कि कुछ देश ऐसे हैं जिनकी इस तरीके की विदेश नीति है जो कि आतंक को फैलाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनकी तरफ से फंडिंग की जा रही है, और ऐसे देशों को रोक लगाने के लिए पूरे विश्व के जो देश हैं उनको साथ आना पड़ेगा, इस तरीके की बात उनकी तरफ से कहा गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आतंक की फंडिंग के लिए जिस तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ये सवाल उठाया गया पूरे कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है, वेब के जरिए भी पैसे आ रहे हैं, डार्क वेब का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में कई ऐसे छोटे छोटे जो गैंग्स हैं वो भी इस तरीके से आतंक की फंडिंग कर रहे हैं, जिसमें हाल ही में एनआईए ने जो कार्रवाई की है उसका भी जिक्र किया गया और ये कहा गया कि गैंग्स जो हैं वो दिल्ली एनसीआर या दूसरे राज्यों में किस तरीके से फैले हुए हैं और वो लगातार आतंक की कोशिश कर रहे हैं फैलाने की और उसके पीछे फंडिंग भी विदेशों से की जा रही, तो इन तमाम चीजों पर लगाम लगाने की जरूरत है और ये बात पूरे इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जा रही जिसमें से 73 देश शामिल हैं। पाकिस्तान को भारत की तरफ से न्योता नहीं दिया गया है, चीन को न्योता दिया गया था लेकिन वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुआ है।
जितेंद्र, अमित शाह भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उन्होंने जो एक चिंता टेरर फंडिंग में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को लेकर जो बताई है वो कितनी गंभीर है?
देखिए, क्रिप्टो करेंसी को लेकर के गृह मंत्री के साथ साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इसका चलन जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में भी किया जा रहा है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अलग अलग देशों से क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंडिंग हो रही है इस पर नजर रखने की आवश्यकता है। एक सबसे बड़ी बात है कि नार्को टेरर का इस्तेमाल भी इस समय आतंकी कर रहे हैं जिसके जरिए भी फंडिंग हो रही है, तो इसको कैसे लगाम लगाया जाए इस पर भी बातचीत किया गया। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रोग्राम में लश्करे तैयबा और जैसे मोहम्मद का नाम लिया और उनकी तरफ से कहा गया कि इनकी तरफ से जो आतंक फैलाया जा रहा है और इसके पीछे जो लोग फंडिंग करने में लगे हुए हैं उन पर लगाम लगाने की जरूरत है और ये भी कहा कि जो नार्को टेरर ड्रोन के जरिए जो भारत के अंदर टेरर एक्टिविटीज फैलाई जा रही हैं, हथियारों को भेजा जा रहा है, उस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है और इस पर कड़े कदम जब तक नहीं उठाए जाएंगे तब तक आतंक की फंडिंग ऐसे ही होती रहेगी।
अच्छा, टेरर फंडिंग के खिलाफ दुनिया भर के देशों को लामबंद करने की ये जो मुहिम है वो अब तक कितनी कामयाब रही है?
बिल्कुल, जिस तरीके से आतंक की फंडिंग को रोकने के लिए और इस पर नकेल कसने के लिए इस तरीके की कॉन्फ्रेंस विश्व भर में चलाई जाती रही है। इससे पहले अगर आप बात करें तो इंटरपोल की कॉन्फ्रेंस भारत में ही हुई थी और प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था और इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से कहा था कि जिन देशों की पॉलिसी ही आतंक फैलाने की है उन पर नकेल कसने की जरूरत है। इसके साथ ही जो दूसरे देश हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बात करें, नो मनी फॉर टेरर को लेकर के कॉन्फ्रेंस हुई थी, इससे पहले पेरिस में भी हुई थी, तो इस तरीके की कॉन्फ्रेंस से जो देश हैं वो लामबंद हो रहे हैं और उनका मकसद सीधे ये है कि कई ऐसे देश जो हैं जो कि आतंकी फंडिंग करने में जुटे हुए हैं उन पर लगाम लगाया जाए। हालांकि पाकिस्तान जिस तरीके से इन तमाम चीजों पर लगा हुआ है, भारत की कोशिश हमेशा से ये रहती है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो इनके साथ खड़े हो जाते हैं। चीन की बात करें तो जैशे मोहम्मद या लश्करे तैयबा के आतंकियों पर जब सैंक्शन लगाने की बात होती है तो चीन उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है, तो इन देशों को सोचना होगा और भारत की जो मुहिम है, भारत कोशिश ये कर रहा है कि सभी देश आपस में आतंकी फंडिंग रोकने में एक साथ आएं और यही मुद्दा लेकर के ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली में इस वक्त की जा रही।
बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए जितेंद्र बहादुर सिंह। तो ये था आज का दिन भर। कैसा लगा आपको हमारा पॉडकास्ट जरूर बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। आज का एपिसोड प्रोड्यूस किया है सूरज कुमार ने, साउंड मिक्सिंग है कपिल देव सिंह की। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।